दिन भर 19 जून दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत ने विजय माल्या और ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को पत्र नहीं भेजे।
अभी तक प्रत्यर्पण का पत्र गया ही, यहाँ तक ललित मोदी का सवाल है, अभी ईडी ने हमको एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी नहीं।
जापान के द्वीप ओकिनावा पर अमरीकी फौज के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन।
दिस इज नॉट हाउ वी वॉन्ट द कंट्री टू बी, वी आर योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, बट वी वॉन्ट पीस टू बी गॉन।
सुनिए, 100 साल पहले मुसलमान औरतों के क्या थे सरोकार और तब कितनी बेबाक थी उनकी आवाज। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार की विदेश नीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सहजता आई है, लेकिन भारत पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ठोस कदम की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने की प्रक्रिया में भारत ने रूस और चीन जैसे देशों की अनदेखी नहीं की है। उद्योगपति विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में पत्र भेजा जाएगा। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सरकार हिंसा को नियंत्रित करने के लिए शराब की 500 सरकारी दुकानों को बंद कर रही है। बाकी दुकानों के खुलने के समय में भी कटौती की जा रही है। मुख्यमंत्री जयललिता ने पिछले महीने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान धीरे धीरे शराब पर प्रतिबंध का वादा किया था। ये वादा महिला मतदाताओं के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो घरेलू और यौन हिंसा की एक बड़ी वजह शराब को मानती हैं। भारत के कई राज्यों में पहले से शराब पर प्रतिबंध है। इटली के बड़े शहरों में मतदाता स्थानीय निकाय के चुनावों में वोट डाल रहे हैं। राजधानी रोम में नए मेयर के चुनाव पर खासतौर से सबकी नजरें टिकी हैं, जहां मुख्य मुकाबला 5-स्टार मूवमेंट की वर्जीनिया रागी और प्रधानमंत्री माते रेंजी की डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता रोबर्टो गियाचेत्ती के बीच है। रोम में ट्रेनों की आवाजाही में बाधा और कूड़ा उठाने जैसे मुद्दे आम लोगों के लिए बहुत अहम हैं। नगर प्रशासन पर भ्रष्टाचार और माफिया से साठगांठ के आरोप भी लगते हैं। ऐसे में लोगों को रागी से बदलाव की उम्मीद है।
Penso vincerà Virginia Raggi con un buono scarto.
मेरी राय में जीतेंगी रागी ही, क्योंकि लोगों को उनका आंदोलन बहुत पसंद है, इसलिए हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि लोग एकजुट होकर वोट देंगे। ये थे एक आम मतदाता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान के ओकिनावा द्वीप पर दसियों हजार लोग वहां अमरीकी सेना की मौजूदगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन एक जापानी महिला के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या को लेकर हो रहा है, जिसके आरोप एक पूर्व अमरीकी सैनिक पर लगे हैं। ओकिनावा में अमरीकी सैन्य मौजूदगी का पहले से भी विरोध होता रहा है, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम ने इसे और भड़का दिया है। लेकिन जापान और अमरीका का कहना है कि ये मौजूदगी दोनों देशों के सैन्य गठबंधन का अहम हिस्सा है, खासकर तब जब चीन लगातार आक्रामक हो रहा है। सहायता कर्मियों ने चेतावनी दी है कि इराकी शहर फलूजा से बड़ी मात्रा में लोग भाग रहे हैं, जिसके चलते वहां एक मानवीय संकट सामने आ रहा है। और बांग्लादेश में पुलिस ने कहा है कि उसने ब्लॉगर अभिजीत राय की हत्या के एक मुख्य अभियुक्त को मार गिराया है। पुलिस का कहना है कि बाइक पर सवार 3 लोगों ने गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने ये कार्रवाई की। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की तीसरी सभा। दिन भर में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ मैं हूं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय विदेश मंत्री के बयान से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत ने विजय माल्या और ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को पत्र अभी नहीं भेजे हैं। लंदन में एक कार्यक्रम में ललित मोदी और भारतीय उच्चायुक्त की मौजूदगी पर भी सुषमा स्वराज ने सफाई दी है। और क्या कुछ कहा है, सुनिए निखिल रंजन से।
दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सालाना संवाददाता सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जब पूछा गया कि विजय माल्या और ललित मोदी के प्रत्यर्पण के संबंध में भारत को ब्रिटेन से सहयोग क्यों नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा,
अभी तक प्रत्यार्पण का पत्र गया ही नहीं है उनको। यहाँ तक ललित मोदी का सवाल है, अभी ईडी ने हमको एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी नहीं, जिस दिन भेजेंगे हम उसको आगे भेज देंगे। विजय माल्या के संबंध में उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उसको हमारे सीपीवी डिविजन ने एग्जामिन करके उसमें कुछ चेंजेस सुझाए हैं जो हमने वापस ईडी को भेजी है। जैसे ही ईडी से हमें वो पत्र मिल जाएगा, हम वो एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट भी आगे भेजेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि वो डिपोर्टेशन की बात यूपीए की सरकार करती रही, एक्सट्राडिशन की बात कभी नहीं की। एक्सट्राडिशन की बात इस सरकार ने आके शुरू की है, तो जैसे ही ईडी से एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट इन दोनों के बारे में मिल जाएंगी, हम आगे भेज देंगे।
कारोबारी विजय माल्या को भारतीय बैंक की 9000 करोड़ रुपए की उधारी चुकानी है। वहीं आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर गंभीर वित्तीय धांधलियों के आरोप हैं। एक दिन पहले लंदन में विजय माल्या और भारतीय उच्चायुक्त एक ही कार्यक्रम में नजर आए थे। इस बारे में पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,
जो कल की घटना की बात आप कर रहे हैं उसमें उच्चायुक्त का किसी तरह का कोई दोष नहीं है। अब सुहेल सेठ अगर अपने आप किसी को इनवाइट करते हैं तो हाई कमिश्नर को उसकी खबर नहीं। और ये भी आप जानते हैं कि जब भारतीय उच्चायुक्त ने देखा कि विजय माल्या वहाँ उपस्थित हैं, तो 5 मिनट में वहाँ से उठ के चले गए। मुझे नहीं समझ आता इसके बाद ये किस बात का इश्यू बन रहा है, किस बात का मुद्दा बन रहा है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में सहजता आई है, लेकिन आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इस साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बहाल करने की कोशिशें पटरी से उतर गईं। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तानी जांच टीम हमले के संबंध में जो जानकारियां भारत से लेकर गई है, उसके विश्लेषण के लिए पाकिस्तान कुछ समय चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पाकिस्तान की तरफ से किसी अच्छी ठोस कार्रवाई का इंतजार है।
रिपोर्ट सुना रहे थे निखिल रंजन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने सालाना संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के कार्यों का गुणगान भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष 101 देश थे जिनसे हमारा संपर्क और संवाद हुआ था। इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 140 हो गई है। लेकिन इस बार के संपर्क में कुछ चीजें बहुत उल्लेखनीय है। सबसे पहला है हमारा अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क। दूसरा बड़ा संपर्क हुआ फिपिक देशों के साथ, प्रशांत महासागर के द्वीप देश। तीसरा बड़ा संपर्क हुआ पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में, और बहुत हाई लेवल विजिट्स, बड़ी उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। चौथा बड़ा संपर्क है अरब लीग के साथ। पांचवा उल्लेख मैं करना चाहूंगी सार्क का। पिछली बार तक सार्क के सभी देशों की यात्रा पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार सार्क के सभी देशों की यात्रा हुई। पहली उपलब्धि है विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि।
तो जैसा कि आपने सुना, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक भारतीय विदेश नीति में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, संबंध बेहतर हो रहे हैं और विदेशी पूंजी निवेश में भी वृद्धि हो रही है। ये तो हुई सरकारी बात, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है, जानकार क्या मानते हैं, जानने के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे से।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध है वो बिल्कुल सही नहीं है, और इसके बारे में कोई सोचकर एक दीर्घकालीन नीति अपनाई जाए और उसके ऊपर अधिक रहा जाए और उसको कार्यान्वयन किया जाए, अमल में लाया जाए, ऐसा देखने को नहीं मिला है। एक तरह का अचानक लगता है कि हमारी नीति ऊंचाई पर पहुंच रही है और अचानक ये नौबत आ जाती है कि इन देशों के साथ बातचीत बंद हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है और लगता है कि संबंधों में अब कुछ शेष नहीं बचा हुआ है। और ये चीज सबसे ज्यादा लागू है नेपाल के प्रति और पाकिस्तान के प्रति। मुझे लगता है कि नेपाल के साथ जो हमारे संबंध जो अभी हैं वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है और उसमें बहुत तीव्र गति से ह्रास हुआ है, और ये दूर के सोचने का भाव है, एक स्थायी नीति अपनाने का भाव है। और कोई विदेश नीति केवल प्रधानमंत्री के लगातार या विदेश मंत्री के लगातार यात्राओं के दूरी से मापी नहीं जा सकती है। वो मापी जा सकती है कि आपने प्रमुख देशों के साथ अपने संबंध को चलाने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई है और उस रणनीति में आप अधिक रह पाए नहीं रह पाए हैं, आपने जो कार्यकलाप किए हैं वो उस रणनीति के अनुकूल है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कोई रणनीति नहीं है और खास करके पाकिस्तान और नेपाल के साथ तो कोई रणनीति नहीं है। अगर पड़ोस से हम थोड़ा बाहर निकलें तो मुझे लगता है कि एक गलत धारणा पर कि केवल पाश्चात्य देशों से पूंजी आकर के और बड़े बड़े पैमाने में लागत आके देश के विकास में वृद्धि हो सकती है। और इसीलिए ये जो झुकाव है पूंजी लाने के लिए और कॉरपोरेशन को पाश्चात्य देशों के कॉरपोरेशन को लाने के लिए, ये झुकाव मेरी समझ से दूरदृष्टता का परिचायक है। हमारा विकास हमारी आंतरिक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक टिल्ट जो है, एक हम काफी ज्यादा मुड़ गए हैं पाश्चात्य देशों की तरफ, खास करके अमेरिका की तरफ।
भारत पाश्चात्य देशों की तरफ, खासतौर पर अमेरिका की तरफ ज्यादा मुड़ गया है। ये थे भारत के पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अगली खबर जापान से, जापान के ओकिनावा द्वीप से, जहां अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी के विरोध में हजारों लोग एकजुट हुए हैं। ये लोग अमरीकी सैन्य कर्मचारियों को द्वीप से बाहर निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
हजारों प्रदर्शनकारी जापान के ओकिनावा टापू पर बड़ी मात्रा में अमरीकी सैनिकों की मौजूदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हैं। प्रदर्शनकारी इस बात से बेहद नाराज हैं कि आम नागरिक के तौर पर जापान में काम कर रहे एक पूर्व सैनिक को 20 वर्षीय स्थानीय महिला के बलात्कार और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद से अमरीकी सैनिकों को हटाए जाने की बात ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। ओकिनावा में लगभग 26,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। ये सभी इस टापू पर ही काम करते हैं और अमरीका और जापान की संयुक्त सेना का हिस्सा हैं। प्रदर्शनकारियों ने विरोध से पहले मृत महिला रीना शिमा बुकुरो की आत्मा की शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमरीकी सैनिकों के जाने का समय अब आ गया है।
मैं चाहती हूं कि वो जापान से पूरी तरह से चले जाएं।
मैं मानता हूं कि ये बोझ ओकिनावा को ही उठाना होगा, पर क्योंकि सैनिकों से जुड़ी इतनी ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि उन्हें अब चले जाना चाहिए। ये थे कुछ प्रदर्शनकारियों के शब्द। विरोध कर रहे लोगों ने मृत महिला के पिता की ओर से आए एक संदेश को भी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि ऐसा मेरी बेटी के साथ क्यों हुआ और उसे क्यों मारा गया। विरोधियों को संबोधित करते हुए ओकिनावा के गवर्नर ताकेशी ओनागा ने 21 साल पहले हुई अमरीकी सैनिक द्वारा एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को याद करते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों की मांग को पहले ही मान लेना चाहिए था। मैं उस लड़की से कहना चाहता था कि मुझे कितना अफसोस है कि मैं उसे बचाने में नाकाम रहा। हमने 21 साल पहले हुई बलात्कार की घटना के बाद कसम ली थी कि फिर ऐसा नहीं होने देंगे, पर ऐसा होने से रोकने के लिए मैं राजनीतिक प्रणाली को बदल नहीं पाया। एक नेता होने के नाते मुझे इस बात का अफसोस है और मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। ओकिनावा के गवर्नर ताकेशी ओनागा के शब्द। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ओकिनावा 27 सालों तक अमरीकी नियंत्रण में था। 21 साल पहले 1995 में हुए 12 वर्षीय स्कूली छात्रा से बलात्कार के बाद अमरीकी सैन्य केंद्र को हटाने की बात ने जोर पकड़ा था, पर कानूनी पैंतरों की वजह से ये बात अब तक टलती रही है।
जापान के द्वीप ओकिनावा पर अमरीकी फौज के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
जरा सोचिए, करीब 100 साल पहले मुसलमान औरतें अपनी जबान में उर्दू में क्या लिखती थीं, क्या पढ़ती थीं। आज के दौर में जब मुसलमान औरतों का जिक्र बुरका, तीन तलाक, इस्लामी फतवों या यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में ही होता है, आपको हैरानी होगी कि 20वीं सदी की शुरुआत में वो इसके इतर कितनी तरह की बातें कर रही थीं। हाल ही में एक नाटक हम ख्वातीन में उस दौर के कुछ लेखों को चुनकर दिल्ली में प्रस्तुत किया गया और इसमें 20वीं सदी की शुरुआत में मुसलमान औरतों की जिंदगी की झलक नजर आती है। क्या थे उस वक्त इन औरतों के सरोकार और कितनी बेबाक थी तब उनकी आवाज। विशेष पेशकश के साथ बीबीसी संवाददाता दिव्या आर।
स्कूल की लड़कियां, जफर जहां बेगम 1927। जो लड़कियां स्कूलों में तालीम पाती हैं, तालीम निस्वा के मुखालिफीन की निगाहें उनके तमाम हालात का मुआयना निहायत गौर से करती रहती हैं, और जरा कोई बात खिलाफे मामूल नजर आई नहीं।
आप सुन रहे हैं करीब 100 साल पहले उर्दू में लिखी मुसलमान औरतों की बातें। नाटक हम खवातीन हमें उस दौर में ले जाता है जब मुसलमान लड़कियों ने स्कूल जाना बस शुरू ही किया था। इससे पहले घर में इस्लामी पढ़ाई तक सीमित लड़कियों को अब बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त दी जाने लगी थी।
लेकिन बेचारी स्कूल वालियों की तो वो श्यामत आती है कि कुछ न पूछिए। हाँ साहब, अब तो वो स्कूल में पढ़कर मेम साहब हो गई, वो क्यों ऐसे जलील काम करने लगी थी।
20वीं सदी की शुरुआत में आ रहे इस अहम बदलाव पर हो रही बहस की नब्ज जफर जहां बेगम ने बखूबी पकड़ी।
मेरी एक अजीजा का कौल है कि बड़ी बूढ़ियां जिस नजर से अपनी बहू और बेटी को देखती हैं, ठीक उसी नजर से स्कूल और घर की लड़कियों को देखती हैं। यानी जिस तरह से कोई ऐब अगर बहू में होगा और ठीक उसी किस्म का या वही ऐब बेटी में भी होगा तो बहू का तो साफ नजर आ जाएगा, लेकिन बेटी का या तो नजर ही ना आएगा या अमदन नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही फर्क स्कूल और घर की लड़कियों के बीच होता है।
ये लेख उर्दू जबान में औरतों के पहले अखबार तहजीब निस्वा में छपा, जिसे मुमताज अली और उनकी पत्नी मोहम्मद उल बेगम ने 1898 में शुरू किया। लिटरेरी हिस्टोरियन रक्षंदा जलील बताती हैं कि स्कूली पढ़ाई का हक मिलने से कुछ दशक पहले से ही पता चलता है कि मुसलमान औरतें खास तौर से अपनी जिंदगी से जुड़े मसलों के बारे में पढ़ना चाहती थीं।
मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब थी बहिश्ती जेवर, यानी हेवनली ज्वेल्स, ये लड़कियों को डावरी में दी जाती थी और उसमें वो सारी टाइप की चीजें लिखी गई थी कि औरतों को अच्छी माँ अच्छी बीवी कैसे होना चाहिए। और आज हम जब इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट किताब है, लेकिन उसकी एक चीज जो बहुत अहम है जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि वो किताब औरतों के लिए लिखी गई है और औरतों को दी जाती थी पढ़ने के लिए, तो उसके नीचे का प्रिजम्पशन ये था कि देयर वाज अ फीमेल रीडरशिप।
मौलाना अशरफ अली थानवी के अलावा नज़ीर अहमद भी घरेलू मसलों के इर्द गिर्द कहानियां बुन रहे थे। औरतों के बारे में औरतों के लिए ये मर्द ही थे जो शुरुआत में लिख रहे थे। फिर 1906 में अलीगढ़ में औरतों के लिए कॉलेज शुरू हुआ, मानो एक स्टेज तैयार किया जा रहा था महिला राइटर्स के लिए।
और वो औरतें कहाँ से निकल के आती हैं? एक राइटर जो बहुत रिमार्केबल है जिनका जिक्र नहीं होता है, अ वुमन राइटर, वो हैं डॉक्टर रशीद जहां। शी इज द डॉटर ऑफ शेख अब्दुल्ला जो अलीगढ़ के कॉलेज के फाउंडर हैं, और ये अलीगढ़ से पढ़ती हैं, फिर ये आईटी कॉलेज लखनऊ जाती हैं, फिर ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जाती हैं और ये डॉक्टर बनती हैं।
लेकिन रशीद जहान से पहले वो सब गुमनाम औरतें आईं जो गाहे बगाहे मैगजीनों और अखबारों में अपने लेख छपवा रही थीं। ये राइटर्स नहीं थी, कहानी या नॉवल नहीं लिख रही थी, इनके लेख इनकी जिंदगी की ही कहानी थी।
और अगर कोई बीवी कभी भूले बिसरे कानों में जेवर पहने बगैर किसी महफिल में शरीक हो जाती है तो उस पर चारों तरफ से अंगुष्ट नुमाई होने लगती है, सारी औरतें उसकी जान को आ जाती हैं और वो अंग्रेजी ख्याल की औरत तसव्वुर की जाती है।
सोने चांदी के जेवर पहनना इतना जरूरी क्यों? क्यों इसी से किसी औरत के मजहबी होने को आंका जाए? जेवरों को जंजीरों की तरह उस वक्त कई औरतें देख रही थी। इसका जिक्र रुकैया सखावत हुसैन की जानी मानी कहानी सुल्ताना का ख्वाब में भी मिलता है। 1905 में मद्रास से छपने वाली मैगजीन द इंडियन लेडीज मैगजीन में छपी इस कहानी में औरतें मर्दों से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इसके बावजूद मर्दों पर हुक्म नहीं चलाया जाता।
जहां तक मैं ख्याल करती हूँ इस किस्म की हिदायत किसी किताब में नहीं पाती, फिर क्यों हमारे मुल्क की मस्तूरात ने बेचारे नन्हे से कानों के हक में ये जुल्म सितम वाजिब समझ रखा है।
हम खवातीन नाटक में इस्तेमाल किया गया ये लेख फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान खातून मैगजीन में 1911 में छपा था। ये मैगजीन अलीगढ़ कॉलेज की शुरुआत करने वाले रशीद जहान के पिता शेख अब्दुल्ला छापते थे, रक्षंदा जलील।
ये पॉपुलर डाइजेस्ट थे एक लिहाज से, इसमें गुड हाउस कीपिंग पे टिप्स होते थे, इस पे और तरह की चीजें होती थी, इस पे तालीम क्यों जरूरी है, औरतों पे इस किस्म की चीजें होती थी, और बीच बीच में छोटे से समझ लीजिए कि फिक्शनल पीसेस भी हुआ करते थे। तो ये एक प्रीकर्सर्स हैं शॉर्ट स्टोरी के, नॉवल के।
भारत में 1000 सालों में औरतों की राइटिंग पर शोध कर हाल ही में अनबाउंड नाम की किताब लिखने वाली एनी जैदी के मुताबिक 19वीं शताब्दी के आखिर के दौर तक राइटिंग बस उनके लिए थी जिनके पास पैसे होने की वजह से वक्त था।
बहुत सी ऐसी थी जो जिन्हें आप लाइक राइटर नहीं कह सकते क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद राइटिंग नहीं था। वो बहुत ज्यादा नहीं लिखती थी, शायद मान लीजिए पूरी जिंदगी में उन्होंने 4 या 5 ही एसेज लिखे हों या अखबारों के लिए लिखा हो, लेकिन ओवरऑल वो जिस दौर का एक लिटरेचर है उसमें जरूर उनको गिना जाएगा कि क्योंकि उस जमाने में लिखाई इटसेल्फ नॉवेल्स हो गई हैं, ये जो बहुत कम होती थी, बहुत बहुत कम होती थी। ये सिर्फ उर्दू की बात नहीं है, ये राइटिंग की बात है और ये मर्द और औरत की भी बात नहीं है।
पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते एक बड़ा बदलाव आया। लिखने की आजादी एक खास क्लास से निकलकर फैल गई,
पब्लिशिंग बदल गई थी। पहले हमारे यहाँ वो नहीं होते थे ना, जैसे अखबार और रिसाले और ये जो कुछ भी हैं, एक किताब आप हाथ से लिख रहे हैं, पार्चमेंट पे लिख रहे हैं, या तो वो तो चीज ही इतनी एक्सपेंसिव है ना, तो जाहिर सी बात है ये आराम से तो किसी औरत के हाथ में नहीं आती थी, इसीलिए आजादियाँ वगैरह लिखती थी। लेकिन पब्लिशिंग ने आके काफी कुछ बदल दिया क्योंकि एक तरह से फिर कंटेंट के लिए जगह खुल गई।
ये लेख जितने निजी थे, घरेलू थे, उतने ही राजनीतिक भी। आजादी से पहले का ये वो वक्त था जब स्वदेशी का अभियान चलाया गया और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का ऐलान किया। उसी से निकला खद्दर पोशी।
एक जमाना था कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आजादी और हुसूले स्वराज के लिए चरखा और खद्दर पोशी की तजवीज पेश की तो घर घर ऐसा जोशो खरोश फैला कि बच्चा बच्चा चरखा काटने और खद्दर पहनने पर तैयार हो गया।
पर ये लेख खद्दर की तारीफ में नहीं बल्कि उसे पहनने और साफ रखने की खामियों से जुड़ा था।
सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के जुलाहों के पास उम्दा से उम्दा पुख्ता रंग नुस्खे मौजूद हैं। इसके अलावा छपाई का काम भी पुख्तगी और खूबसूरती में हिंदुस्तानी कारखानों का मशहूर है, मगर मालूम नहीं क्यों गरीब खद्दर को इन दोनों से महरूम रखा गया।
नाटक के डायरेक्टर विनोद कुमार।
महत्वपूर्ण ये है कि अपने समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जितनी बड़ी शख्सियत महात्मा गांधी थे, उस वक्त भी महात्मा गांधी पे के उस पूरे कंसेप्ट पे सवाल रखना, क्रिटिक करना, ये बड़ी ही हिम्मत की बात है।
नाटक हम खवातीन के लेखों को कलामे निस्वा नाम की किताब से छांटा गया। दिल्ली में काम कर रही संस्था निरंतर के लिए एजुकेशनिस्ट पूर्वा भारद्वाज ने 100 साल पहले की मुसलमान औरतों की उर्दू में राइटिंग को खंगाला और 50 से ज्यादा लेख इस किताब में छापे। इन्हीं में से अलग अलग तेवर और कलेवर की झलक नाटक में मिलती है।
बॉटम लाइन यही है कि हमको हर दौर में अपनी राय रखने का पूरा हक होना चाहिए। अंग्रेजी में एक जुमला इस्तेमाल होता है, एक प्रोवर्ब इस्तेमाल होता है कि डिसेंट ही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होती है। इनफैक्ट ये हमारे पूरे मजामीन का हम सार समझ सकते हैं कि बोलने के लिए हमको आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए हमें बोलना जरूरी है।
20वीं सदी की शुरुआत में लिखे गए इन लेखों में औरतें सवाल तो उठा रही थीं, लेकिन उससे समाज के मौजूदा ढांचों को खतरा नहीं महसूस हो रहा था। इनकी डाली नींव पर जब इमारत खड़ी हुई तो असल खतरा पैदा हुआ, रशीद जहां और इस्मत जैसी औरतों की राइटिंग में। 1932 में रशीद जहां के लेख वाली किताब अंगारे को छपने के 3 महीने के अंदर ही बैन कर दिया गया। इसमें उन्होंने पर्दे के पीछे की औरतों की जिंदगी की और आदमियों की उसकी ओर उदासीनता पर बेबाकी से लिखा था। रक्षंदा जलील।
इस्मत बार बार कहती हैं कि शी वाज स्पॉइल्ड बाय रशीद जहां, ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया। बिगाड़ इसलिए दिया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारी जबान पे होना चाहिए, तुम्हारा कलम पे होना चाहिए। तो इस्मत इस बात को तस्लीम करती है कि उनसे उनको एक तरह की खिड़की खोली उनके लिए रशीद जहां किस्म की औरतों ने।
विनोद कुमार बताते हैं कि हम खवातीन नाटक दरअसल इस्मत के बहाने ही बना। ये साल 2016 इस्मत चुगतई की जन्म शताब्दी का साल है।
हम ये समझना चाह रहे थे कि क्या ये एक कोई अलग सा फेनोमेना है इसमें चुगताई? नहीं, दरअसल ये चीजें पहले से मौजूद थी और इसमें चुगताई उसका एक एक्सटेंशन है, मतलब उस परंपरा की देन है इसमें चुगताई जो हमारे इन मजामीन में जो एक्सप्रेशन है।
इसमत चुगताई पेशे से टीचर थीं और रशीदा जहां डॉक्टर। मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी इन औरतों को एनी जैदी अलग मानती हैं। इन्हें परिवार का साथ मिला और इन्होंने हम खवातीन की औरतों की गुमनामी पीछे छोड़ खुलकर लिखना शुरू किया।
शुरू से औरतों ने जो लिखा है वो औरतों की तरफ से लिखा है और ज्यादातर उन औरतों की तरफ से लिखा है जो खुद नहीं लिख पा रही हैं। ये ट्रेंड हम नोटिस करते हैं, हर जुबान में नोटिस करते हैं, उर्दू में खास नोटिस करते हैं। मुस्लिम औरतों के साथ ये जरूर था कि उन्होंने उनको एजुकेशन थोड़ी बाद में आई और रिलक्टेंटली है, खास करके जो एक बेल्ट है यूपी और बिहार से लेके बंगाल तक की जो पर्दे में थी। मान लीजिए जब औरतों ने निकलना शुरू कर दिया था बाकी कौमों की औरतों ने, उसके करीब 30-40 साल और लग गए कि एक जनरल एक्सेप्टेंस के लिए।
पर चलते चलते एक बात समझना बहुत जरूरी है, समय के साथ मुसलमान औरतों की आवाज़ें इस्लाम के पिछड़ेपन, बुरके की रीत और तीन तलाक जैसे मसलों पर ही सुनाई देने लगी हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन शुरू करने वाली औरतों में से एक रजिया पटेल के मुताबिक मजहब ने औरतों के बाकी अधिकारों से ध्यान खींचने का काम किया है। मुस्लिम महिलाओं के साथ किए अपने शोध के बारे में वो बताती हैं।
तो उनके चार मुद्दे सामने आए थे, उसमें सबसे पहला था तालीम, ये 80% मुस्लिम महिलाओं ने कहा था। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये कहा था कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा, हम रोजगार चाहते हैं और हम कानूनी नाइंसाफी नहीं चाहते। तो इसमें अगर आप देखें हम तो पॉलिटिक्स क्या होता है मुस्लिम औरतों के सवालों का, कि सिर्फ लॉ के सवाल पर, सिर्फ पर्सनल लॉ पे ही हम लोग ब्रिटिश पीरियड से लेके तो आजादी के 70 सालों तक हम सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।
आवाज एक्टिविस्ट से मिले, राइटर्स से मिले या नाटकों से, रजिया के मुताबिक पिछले 100 साल में मुसलमान औरतों की आवाज़ें तो बुलंद हुई हैं पर उन्हें सुनने की जगह अब भी बहुत कम है। जब तक पॉलिसी बनाने वाले ये नहीं समझेंगे, बोलती ही रहेंगी हम खवातीन।
ये थी दिव्या आर्य और इसके साथ ही वक्त हो चला है खेल समाचारों का। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, वैसे अगर देखा जाए तो इन दिनों फुटबॉल की धूम है क्योंकि कोपा अमेरिका का फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले की तरफ वो टूर्नामेंट बढ़ चला है। इसके अलावा यूरो का फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है, लेकिन आज टेनिस की दुनिया में दो बड़े टूर्नामेंट के फाइनल होंगे जहां काफ़ी दिग्गज आपस में टकराएंगे। वेवर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और जर्मनी के ही फ्लोरिन मायर के बीच खेला जाएगा। इससे पहले ज़वेरेव ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए शीर्ष वरीयता हासिल और 3 बार के पूर्व चैंपियन रॉजर फेडरर को सेमीफाइनल में 7-6, 5-7, 6-3 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था। उधर एगॉन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज शीर्ष वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे और तीसरी वरीयता हासिल कनाडा के मिलोस रॉनिक के बीच खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में एंडी मरे ने क्रोएशिया के मारिन चिलिच को 6-3, 4-6, 6-3 से और मिलोस रॉनिक ने ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमी को 6-4, 6-4 से हराया था। उल्लेखनीय है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से पहले इन टूर्नामेंट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब ये तय हो गया कि रियो ओलंपिक्स में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुष वर्ग में एस सतीश कुमार और एस एम चानू महिला वर्ग में भारत का दावा पेश करेंगी और पहला 2020 मुकाबला 2 रन से हारने के बाद अब भारत कल हरारे में जिम्बाब्वे से दूसरे मैच में खेलेगा। निश्चित रूप से दबाव धोनी के खिलाड़ियों पर होगा।
खेल समाचारों के बाद कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर अशोक कुमार से।
बीबीसी समाचार। रूस के पश्चिम उत्तर हिस्से में हुए एक नाव हादसे में 10 बच्चे और वयस्क के डूबने की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि हादसा तब हुआ जब लगभग 50 बच्चे एक बोट पर सवार होकर समर कैंप के लिए जा रहे थे। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सरकार की विदेश नीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सरकार हिंसा को नियंत्रित करने के लिए शराब की 500 सरकारी दुकानों को बंद कर रही है और बाकी दुकानों के खुलने के समय में भी कटौती की जा रही है। और इटली के बड़े शहरों में मतदाता आज स्थानीय निकाय के चुनावों में वोट डाल रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक डेढ़ घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।